الحمد لله، أشكركم لكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحان ربك رب العالمين ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में आम की तफसीर पढ़ा करते हैं मारिफ अल कुरान जिल्द नंबर 3 में से, और इसमें जो आयात नंबर 114, 15, 16 और 17 भी तिलावत की गई उनको हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम को खिताब करते हुए कि अफ़ग़ैरुल्लाही, कि आप कह दीजिए, हालांकि कहने का लफ्ज यहाँ पे मजकूर नहीं है, लेकिन सियाक़ो सबाक से और तफसीर से, जो कि सियाक़ो सबाक के जरिए के साथ ही की जाती है, कि अफ़गैर अल्लाही, आप कह दीजिए कि क्या अल्लाह के गैर को मैं बनाऊं। अबतगी हकमा, हकम यानी फैसला करने वाला। तो इस सिलसिले में जुमे के दर्स में अगर जिसने सुना होगा तो इसको उम्मीद है कि याद होगा कि हमने ये बात भी करी थी कि ये सिर्फ जो है वो मुल्की मुआमलात के ऊपर अप्लाई नहीं होता, कि भाई मुल्की मुआमलात यानी जो कवानीन हैं वो शरीयत के बनाए जाएं या शरीयत को छोड़ करके किसी दूसरे लीगल मेथड के मुताबिक मुल्की कवानीन बनाए जाएं, तो उस पर ये बात अप्लाई होगी। ठीक है कि भाई अल्लाह के कानून को छोड़ करके आपने किसी और को जो है वो कानून बनाया हुआ है जिसके मुताबिक आपकी अदालतें फैसला करती हैं। ठीक है, तो ये तो मुसलमान के लिए हरगज हरगज जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह की किताब को छोड़ करके, अल्लाह के उतारे हुए उसूलों को छोड़ करके बनाया जाए कोई और लीगल सिस्टम, चाहे वो बरतानिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक है, तो उसी तरीके से ये वाली बात जो है वो बहुत ही इनफिरादी और खानदानी उमूर के ऊपर भी अप्लाई होती है, कि इनफिरादी तौर पर भी हमारा किसी से जब झगड़ा होता है तो हम बजाय इसके कि कुरान और सुन्नत के अंदर उसको उसकी रोशनी में उसको समझें कि भाई मैं हक पर हूं कि दूसरा शख्स हक पर है। ठीक है, दीन क्या कहता है, दीन के उसूल क्या कहते हैं, हक की क्या डेफिनेशन हमारा दीन देता है। ठीक है, उसके बजाय हम अपने नफ्स के ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला कर लेते हैं कि मैं ही हक पर हूं और मेरा जो मुखालिफ है वो बातिल पर है, हालांकि हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि अल्लाह का हुक्म इस मामले में क्या है। बस खुद ही एज्यूम करके हम बैठ जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो हम ऐसे पक्के हो जाते हैं कि हम पूरी दुनिया में भी जो है वो इसका ढंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि मैं हक पर हूं, मैं मजलूम हूं, वो जालिम है, मैं सही हूं, वो गलत है। ठीक है भाई, अगर आपको खुद नहीं पता तो आप कम अज कम अहले इल्म हजरात से पूछें तो ना सही, उनसे पूछें तो ना कि भाई मैं हक पर हूं भी कि नहीं हूं। ठीक है, लेकिन हम पूछना भी गवारा नहीं करते। वो तो जब किसी के साथ, किसी शेख के साथ, अहले इल्म के साथ इस्लाही ताल्लुक बनता है और फिर उनके सामने आकर के हम अपने दुखड़े रोते हैं ना कि मेरे ऊपर फुलाने ने जुल्म कर दिया है ना, शेख के पास आकर के ज्यादातर यही हो रहा होता है आजकल। ठीक है, कि मेरे ऊपर फुलाने ने जुल्म कर दिया, बीवी कह रही होती है मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा करता है, मेरा शौहर ये है, मेरा शौहर खराब है, मेरा शौहर वो है, और शौहर साहब आकर के बीवी की बुराइयां करते हैं, मेरी बीवी तो ऐसी है, मेरी बीवी तो वैसी है, है? तब जो सही मानों में शेख होते हैं, ठीक है, इस्लाह करने के लिए जो बैठ जो ये काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि असल में तो इसलाह करना ही इसका मकसद है ना, ठीक है। तो फिर वो बताते हैं कि नहीं, इस मामले में आप हक पर नहीं हैं, बल्कि आप ना हक पर हैं, आप गलती पर हैं, आपको अपनी गलती की जो है वो इसलाह करने की जरूरत है, और दूसरे की गलती या तो वो है नहीं, क्योंकि जब अल्लाह के कुरान अल्लाह की किताब की लाइट में की रोशनी में देखेंगे तो पता चलेगा ना कि पता कि दूसरा जो फरीक है उसकी गलती है भी कि नहीं, ठीक है, तो वो बता देंगे कि भाई दूसरे फरीक की जो है ना वो गलती या तो है ही नहीं, अगर वो नहीं है तो वो नहीं है भाई, ठीक है, या ये कि अगर उसकी भी गलती है तो आप जो है ना वो उसकी गलती की इसलाह की फिक्र में फ्रस्ट्रेट होने की बजाय और हंगामा करने की बजाय आप अपनी गलती की इसलाह करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब करें कि दूसरा फरीक भी अपनी गलती की इसलाह कर ले, ठीक है, अल्लाह से तलब मदद कर से मदद तलब करें, अल्लाह की से जो है वो दुआ करें, ठीक है, और अपनी इसलाह के जरिए से अल्लाह को राजी करें, अपनी इसलाह करके अल्लाह को राजी करें। ये तो नहीं तरीका है ना कि खुद भी गुनाह किए जा रहे हैं और ये भी तवक्को करके बैठे हुए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा। भाई अल्लाह ताला गुनाहगार की मदद क्यों फरमाएगा, अल्लाह ताला उसकी मदद क्यों क्यों फरमाएगा जो कि अल्लाह के हुक्मों को तोड़ी चली जा रही है, उसकी अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी उसको उसको ना, उसके लिए तो पहले उसको तौबा करनी पड़ेगी है ना, ठीक है, लेकिन तौबा कब करेंगे, जब अपनी गलती को मानेंगे, तस्लीम करेंगे, ठीक है। तो यही होता है आजकल जैसे कि मामला चल रहे हैं, आज सबको ही पता है, कोई इतनी ढके छुपी बात नहीं है, बस भूल जाते हैं, शैतान भुला देता है कि सब ठीक है सब ठीक है, जब अपने ऊपर पड़ती है तब पता चलता है अच्छा ठीक नहीं था, वरना जब जो है वो अपनी खेल कूद की जिंदगी और हंसी मजाक की जिंदगी गुजारनी होती है तो उस वक्त शैतान ये बावर करा देता है सब ठीक है भाई बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो फिर आईना दिखाने वाला बताता है कि नहीं भाई सब ठीक नहीं है, आप खुद ही ठीक नहीं है तो दूसरा कोई कैसे ठीक होगा, आप खुद ही ठीक नहीं है, ठीक है। तो अफ़ग़ैर अल्लाह अब्तगी हकम, क्या अल्लाह के गैर को जो है मैं डिसीशन मेकिंग अथॉरिटी बना लू, हाला क्या हुआ लदी अंजला इलैकुम किताबा मुफस्सला, ठीक है। अच्छा इसी पे फिर आगे अहले किताब की बात हुई कि भाई वो लोग जिनके ऊपर किताब नाजिल हुई जिनको हमने किताब दी वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो कुरान मजीद है ये भी अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई है, फिर फरमा दिया इस बात को बयान करके भाई देखो अहले किताब भी तुम्हारी किताब को हक समझते हैं, मानते नहीं हैं लेकिन दिल में तस्लीम तो करते हैं ना, जुबान से इकरार नहीं करते, अपने आप को सबमिट नहीं करते, ठीक है, वरना तो मुसलमान हो जाते, तो वो मुसलमान नहीं होते, लेकिन पता है उनको अपने इल्म की बुनियाद पर उनको पता है कि ये चीज हक है, ठीक है, तो भाई उनको भी पता है कि ये हक है, तो ए मुसलमान फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, वो तो तुम्हारी किताब के बारे में यकीन रखते हैं कि ये सच है, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम ही अल्लाह की किताब के बारे में जो अल्लाह ने तुम्हें अपने नबी के वास्ते से दी है तुम खुद ही उसके बारे में शक में मुब्तला रहो, तुम्हें शक हुआ हुआ है इसके ऊपर इस किताब के ऊपर, ठीक है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह ताला उस जमाने के मुसलमानों को कह रहे हैं कि शक में मत पड़ना, ठीक है, या अगर तुम्हारे दिल में कोई भी शक है तो उसको रिमूव कर दो अपने दिल से, तौबा कर लो उसके ऊपर, ठीक है। और आज 1400 साल गुजरने के बाद जो हालात के अंदर तब्दीली आई हुई है, ठीक है, हमने पिछले दिनों पिछले जुमे को जो ये बात करी तो उसके बाद फिर यानी इसी इन्हीं आयात के ऊपर दर्स हुआ था पिछले जुमे का भी, तो उसके बाद फिर जो मर्द हजरात के साथ बैठते हैं निजी मजलिस की शक्ल होती है तो उसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसमें साजिश ने उनको यही समझाया कि भाई अल्लाह ताला उस जमाने के मुसलमानों को तो शक में पड़ने से जो मना कर रहे हैं ना वो तो ऐसे ही है कि जैसे बेहतरीन जो तालिबे इल्म होता है जो कि गलती नहीं भी करता और बड़े अच्छे से अपना काम करता है ना उसको भी टीचर जो है वो याद दहानी कराता रहता है, कि भाई तुम अभी तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन कहीं गलती ना कर जाना, वरना तुम्हारे ग्रेड्स मुतासर हो जाएंगे, वरना तुम्हारे जो है वो एग्जाम का पर्चा खराब हो जाएगा। हालांकि वो गलती कर नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी उसको जो है ना वो याद दहानी कराते रहते हैं, ठीक है ना। वो सहाबा को तो यही मामला था, वो तो शको शुबे में पड़ी हुई नस्ल थे ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी, ठीक है। फिर सहाबा के बाद की जो नस्लें थी ना, तो उनमें भी अक्सरियत जो मुसलमानों की होती थी, सो एक्सेप्शंस तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन जो वाजह अक्सरियत मुसलमानों की होती थी, वो शक में मुब्तला नहीं होते थे अपने दीन के बारे में। वो अपने दीन के बारे में शक व शुबे में मुब्तला नहीं थे, तो ईमान उनका महफूज था, ईमान उनका महफूज था, ठीक है। यानी सहाबा, फिर ताबईन, तबा ताबईन, और फिर उनके बाद की जितनी जनरेशन आई, सबका ईमान महफूज होता था। अलबत्ता ईमान महफूज होने के बावजूद इंसान गुनाह में पड़ जाता है, ठीक है। शैतान जो है वो तो गुनाह में पहले टालने की कोशिश करते हैं ना, ईमान के ऊपर तो फिर वो बाद में हमला करता है, पहले तो वो अमाल पे हमला करता है। तो मुसलमानों के जब जब अमाल खराब हुए, तो उनको खूब जो है वो सजा मिली। माजी के अंदर बहुत सारे ऐसी मामलात हुए हैं जिनके अंदर मुसलमानों को बहुत सजा मिली है, ठीक है। वो किस वजह से सजा मिली है? आमाल की खराबी की वजह से, गुनाहों में पड़ जाना, गफलत में पड़ जाना, लेकिन वो अकायद के बारे में शक में मुबतला नहीं थे, ठीक है। अकायद के बारे में शक में मुबतला नहीं हुए, आमाल की कमजोरी आई, हत्ता के शराब नोशी शुरू कर दी, गुनाह के दूसरे काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो तातारियों का हमला हुआ, तातारियों ने तहो तेग करके रख दिया ना, बहुत बड़ा ये वाकया है, यूरोश तातार, ठीक है। फिर उसके बाद और बहुत सारे मुकामात पे, जैसे स्पेन के अंदर, स्पेन में भी जो है वो 600 साल मुसलमानों ने हुकूमत करी, और फिर वही गुनाहों की जिंदगी में पड़ गए। इतना बुरा मामला हो गया अमाल के हिसाब से कि जो ईसाई थे स्पेन में रहने वाले, उन्होंने ऐसा हमला किया कि पूरे के पूरे स्पेन के अंदर, कितना बड़ा मुल्क है स्पेन, आप यूरोप का नक्शा उठा करके देखें कितना बड़ा मुल्क है स्पेन, वो पूरा का पूरा मुसलमानों के हुकूमत में था, सिवाय चंद बॉर्डर के कुछ इलाकों के, पूरा स्पेन जो है मुसलमानों की हुकूमत में था, ठीक है। तो अब ये हाल हुआ जो स्पेनिश इंक्विजिशन हुई, कि एक मुसलमान बाकी नहीं बचा उस पूरे के पूरे मुल्क के अंदर, या तो कत्ल कर दिए गए सारे के सारे, चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, कत्ल कर दिए गए, ठीक है। या खौफ, कत्ल के खौफ के जरिए से उनको ईसाई बना लिया गया, और मुसलमानों ने फिर ईसाइयत इख्तियार कर ली, यानी बाकायदा ईसाई बन गए, या उनको जो है वो धकेल करके बाहर निकाल दिया गया, और वो फिर कश्तियों में बैठ करके, अटलांटिक ओशन तो बराबर में है ना, उधर कश्तियों में बैठ करके फिर वो साउथ अमेरिका पहुंचे, ठीक है ना। वो अल्लाह ताला ने उनको पहुंचा वहां पे। अब साउथ अमेरिका के अंदर ये स्पेनिश मुस्लिम्स की बड़ी तादाद वहां पे नजर आती है, जो कि वहां पे जाकर के फिर ईसाई बन गए, क्योंकि वहां पहले से जो है वो ईसाई यानी बहुत ज्यादा ताकत में थे। तो ऐसे अल्लाह ताला का मामला होता है, ठीक है। लेकिन ये बाद में हुआ ना, कन्वर्जन हो गई ना, ये तो पूरी की पूरी ईसाइयत में कन्वर्जन हो गई, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुसलमान अपने दीन के बारे में शक में नहीं पड़े थे कि हाँ भाई कोई बस वो किताबें पढ़ पढ़ करके या सोचो विचार करके वो शक में पड़ गए कि अपने दीन के बारे में, नहीं ऐसा नहीं हुआ कभी भी। हत्ता के तातारियों के जमाने में जब मुसलमानों को उन्होंने मारा, तो मुसलमान औरतों को तातारी जो हैं वो अपने साथ ले गए, जो बची खुची मुसलमान लड़कियां थी ना, उनको तातारी फौज वाले वो अपने साथ ले गए, ठीक है। और उनको अपने घरों में बीवियां बना लिया, बीवी बना करके रहना शुरू हो गए, ठीक है। हालांकि वो काफिर थे और ये मुसलमान थी, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा मशायख के बयान के अंदर, खसूसा हमारे हजरत भी तो बहुत ज्यादा इसका तस्करा किया करते थे, ठीक है, कि ये जो मुसलमान लड़कियां थी ये तातारियों के घर में रही, ठीक है, लेकिन इनके इनको जो अल्लाह ताला ने तातारियों की औलाद की माँ बनाया, तातारियों की औलाद की माँ इन मुसलमान लड़कियों को बनाया, ठीक है, इनका ईमान इतना महफूज था, मौजूद था इनके पास ईमान, कि इन्होंने अपनी उन औलादों की ईमानी तरबियत करी, उन औलादों की ईमानी तरबियत करी। अब इनके जो बच्चे थे जब वो बड़े हुए तो वो ऊपर से तो अपने आप को तातारी जाहिर करते थे लेकिन अंदर से वो मुसलमान थे। क्यों? क्योंकि माओ ने तरबियत करी थी, उनकी ईमानी तरबियत करी थी, मुसलमान के तौर पे उनको पाला पोसा था, ठीक है, छुप करके खामोशी के साथ, यानी बाप को पता भी नहीं चलने दिया कि ये बच्चा जो है ना, ये मैं उसको ईमान वाला बना रही हूं, बाप को पता भी नहीं चलने दिया। फिर ये नस्ल जो जवान हुई है तो इनके जरिए से फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तातारी पूरी नस्ल को मुसलमान बना दिया और फिर ये अगली मुसलमान हुकूमत बनी, ठीक है आया यूरश तातार के अफसाने से पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, ठीक है ना। ये तो बुत परस्त थे, ये तो बल्कि इनका तो कोई भी क्या दीन था इनका, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हीं के वास्ते से काबतुल्लाह को पासबां अता फरमा दी। तो इनकी तरबियत किसने करी? माओ ने करी, ईमानी तरबियत, ठीक है। तो भाई माओ का ईमान महफूज था तब उन्होंने ईमानी तरबियत करी ना अपनी औलाद की, उनको पता था कि ईमानी तरबियत क्या चीज होती है तब उन्होंने ईमानी तरबियत करी ना अपनी औलाद की। अगर उनको खुद ही पता नहीं होता कि ईमानी तरबियत किस चीज को कहते हैं, उनका खुद ही ईमान महफूज ना होता तो अपनी औलादों की ईमानी तरबियत कैसे करती, ठीक है। लेकिन इसके बरअक्स उम्मत मुस्लिमा के ऊपर 1300 साल के बाद एक हालात आए, ठीक है, एक खास किस्म के हालात आए कि जिसके अंदर के मुसलमान मुल्कों के ऊपर, जहां पे मुसलमानों की हुकूमतें थी, वहां पे दज्जाली कुवतों का कब्जा हो गया। दज्जाली कुवतों का, ये कौन सी थी? ये यूरोप के, बरतानिया और फ्रांस के मुल्क थे, ठीक है, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ये दो जो यूरोप के रहने वाली कौमें हैं ना, इन्होंने जब 19वीं सदी, बल्कि 18वीं सदी, ठीक है, 18वीं सदी 19वीं सदी में जब कब्जा किया पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर, नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर और सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मुसलमान इलाका, ये कुछ बरतानवी ले गए, कुछ फ्रेंच ले गए, ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या किया, ये वही यूरोपियंस थे कि जिन्होंने उस वक्त से कोई 500-600 साल पहले बैतुल मुकद्दस के ऊपर हमला किया था, ठीक है, और उन्होंने मुसलमानों को मार मार के खत्म कर दिया था। जिस शहर के ऊपर कब्जा करते थे शाम के इलाके में, वहां मुसलमानों को खत्म कर देते थे, हत्ता के बैतुल मुकद्दस पे जब इन्होंने कब्जा किया, क्रूसेडर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो इन्होंने सारे मुसलमानों को मार दिया, ठीक है, और बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया। 100 साल तक उस पर काबिज रहे, फिर हमले कर करके बिलाकर सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस को वापस मुसलमानों के हवाले किया। 100 साल लगे इसके अंदर, ठीक है, तो उस वक्त भी यही यूरोपियंस थे लेकिन इन्होंने मुसलमानों को मार मार के खत्म कर दिया था और कब्जा कर लिया था इनके शहरों के ऊपर, ठीक है। लेकिन इस बार जब 18वीं सदी ईस्वी और 19वीं सदी ईस्वी में जब इन लोगों ने कब्जा किया बरे सगीर के ऊपर और अफ्रीका के मुल्कों के ऊपर, इस बार इन्होंने क्या किया? इस बार इन्होंने वो नहीं किया जो के सलीबी जंगों के दौरान उन्होंने किया था। इस बार इन्होंने क्या किया आप बता दें, इतना तो इंशाल्लाह आप में से भी अक्सर को पता होगा कि इस बार उन्होंने क्या किया जब बरे सगीर पे कब्जा किया और अरब मुल्कों के ऊपर कब्जा किया, तो इस बार उन्होंने क्या किया, क्या फर्क था सलीबी जंगों के जमाने में कब्जे और इस जमाने में कब्जे के दरमियान क्या फर्क था? कब्जा तो दोनों सूरतों में किया ना, उस जमाने में भी कब्जा किया था, इस जमाने में भी कब्जा किया, फर्क क्या था इन दोनों? जी थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन। अच्छा, इन्होंने जवाब दिया है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने आगे का जवाब दे दिया है, हम उससे पहले का जवाब पूछ रहे हैं आपसे। मुसलमानों को गुलाम बनाए, तो गुलाम तो वो पहले भी बनाया था भाई, अभी भी बनाए, फर्क क्या है? पहले उन्होंने सबको मारा, इस बार उन्होंने किसको मारा? ये फर्क चले बता दें, सवाल को पहले आसान कर देते हैं। पहले इन्होंने सबको मारा, इस बार इन्होंने सबको नहीं मारा बल्कि किसको मारा? हाँ, इस बार इन्होंने सिर्फ उलमा को मारा, इस बार इन्होंने सबको नहीं मारा, अवाम उन्नास को नहीं मारा, इस बार उन्होंने सिर्फ उलमाए कराम को मारा, ठीक है ना? उलमाए कराम को मारा, और वो भी वो उलमाए कराम जिन्होंने इनकी मुखालफत करी, ठीक है, जिन्होंने इनकी मुखालफत करी उनको मारा, और जिन्होंने इनके साथ हैंडशेकिंग कर ली, जिन्होंने इनके साथ हैंडशेकिंग कर ली उनको नहीं मारा, ठीक है, बल्कि जिनको मारा ना उनको भी पहले इन्होंने ये कोशिश करी कि हमारे साथ मिल जाओ, जब उन्होंने मिलने से इनकार किया तब उनको मारा, वरना उनको भी ये छोड़ देते, उनको भी ये छोड़ने के लिए तैयार थे, और अवाम उन्नास को तो वैसे ही छोड़ने के लिए तैयार थे, और उन्होंने छोड़ दिया अवाम उन्नास को, नहीं मारा अवाम उन्नास को उन्होंने, ठीक है, तो सिर्फ जो मुखालिफीन थे उनको मारा, ना मुवाफिकत करने वाले उलमा को मारा, यानी उलमाए सू जो थे उनको नहीं मारा इन्होंने, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क था। पहले सलीबियों ने ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं किए थे, हत्ता कि जब स्पेन के ऊपर ईसाइयों ने मुसलमानों पर कब्जा किया था उस वक्त भी इन्होंने कोई तफरीक नहीं करी थी कि अवाम को छोड़ देंगे उलमा को मारेंगे, नहीं, उन्होंने सबको मारा, हत्ता कि एक, यानी हो सकता है एक आध कहीं पे छुप करके बच गया हो, लेकिन मुहावरतन कह देते ना, एक मुसलमान भी नहीं बचा स्पेन के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से ये स्पेनिश जो थे ये फिलीपींस पहुंचे, फिलीपींस पूरा मुसलमान था, पूरा फिलीपींस मुसलमान था, ठीक है, लेकिन वहां पे भी जाकर के इन्होंने मारा, तो जो मुसलमान थे जिन्होंने इनका मुकाबला किया उन सबको मार दिया, और बाकी जितने मुसलमान रह गए थे उन सबको ईसाई बना ली, पूरा फिलीपींस अब ईसाई बन चुका, ये इस तरीके से ईसाई बना, तलवार के जोर पे ईसाई बना, ठीक है, फिलीपींस। तो मार कुटाई जो है ना ये स्पेनिश ने तो करी, लेकिन फ्रेंच और ब्रिटिश ने नहीं करी, इन्होंने नहीं करी ये मार कुटाई, ठीक है, सिवाय उलमाए हक के, और किसी को नहीं मारा इन्होंने। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि जब इनका कब्जा हो गया, हुकूमत वक्त को तो उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कर दिया, उसके बेटों के जो है वो सर कलम कर दिए, तश्तरीम उसके सामने पेश कर दिए, ये सब कुछ हो गया। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने तालीमी निजाम, ठीक है, अब तालीमी निजाम इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड मूंगाले वाला जो मशहूर है लॉर्ड मुकाले के नाम से, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले, तो उस तालीमी निजाम के जरिए से फिर इन्होंने मुसलमानों के जो है ना वो पहले तो आमाल खराब थे, ठीक है ना, जिस आमाल खराबी की वजह से अल्लाह ताला ने तातारियों के जरिए मुसलमानों को पिटवाया था, जिस आमाल की खराबी की वजह से अल्लाह ताला ने स्पेन के मुसलमानों को पिटवाया, ठीक है, उसी आमाल की खराबी की वजह से बरेसगीर में भी यही हुआ, ठीक है, वो काबिज हो गए, लेकिन इस वक्त जो थे ना मुसलमानों के आमाल इतने ज्यादा खराब हो चुके थे, इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि अब इनके ईमान की भी बहुत कमजोरी हो चुकी है, ईमान भी बहुत कमजोर हो चुका था। इस सिचुएशन को फ्रेंच और ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, इससे उन्होंने फायदा उठाया और अपना तालीमी निजाम यहां पर इंट्रोड्यूस करके और सबके लिए जो है ना वो उसको लाजमी बना करके कि देखो अगर तुम हमारे तालीमी निजाम से पढ़ोगे तब तुम्हें जो है ना वो नौकरी मिलेगी, वरना तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, और चूंकि मुसलमान के लिए उस वक्त दीन से ज्यादा नौकरी अहम हो चुकी थी, दीन से ज्यादा नौकरी और इनकी खुशनूदी अहम हो चुकी थी, मुसलमानों को कोई मसला नहीं हुआ, उन्होंने तालीमी निजाम को कबूल कर लिया। हाँ जी बिल्कुल, तरक्की के लिए बस यही तालीमी निजाम जो है ना, ये तो जरूरी है, तरक्की होगी इससे। ठीक है, अब इसके जरिए से क्या हुआ कि मुसलमानों का ईमान खत्म हो गया, मुसलमानों का ईमान खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने इतनी चालबाजी से काम लिया, इतनी चालबाजी से काम लिया कि इन्होंने मुसलमानों का ईमान तो खत्म किया, लेकिन इनको आमाल की आजादी दे दी कि आमाल करो तुम, हम तुम्हें आमाल करने के ऊपर नहीं रोकेंगे, आमाल करते रहो ईमान के बगैर। आमाल बंदा ईमान के बगैर क्यों करता है? अब इसके ऊपर एक सवाल पैदा होता है ना कि भाई दीन के आमाल क्यों करे बंदा जब उसका ईमान ही नहीं है? इसका जवाब, क्योंकि अजीब बात कर रहे हैं आप, है ना, कि भाई ईमान खत्म हो गया लेकिन आमाल की आजादी दे दी उन्होंने कि भाई आमाल तुम करते रहो, तो उसके ऊपर एक सवाल पैदा होता है कि जब ईमान खत्म हो गया तो फिर आमाल क्यों कर रहे थे मुसलमान? जी क्या जवाब है इसका? जब अमाल खत्म, जब ईमान खत्म हो गया तो अमाल क्यों कर रहे थे? दिखावा करने के लिए, किसको दिखाने की जरूरत थी? कोई आपसे चेक कर रहा था कि आप अमाल करेंगे तो हम आपको मुसलमान मानेंगे? तो भाई सभी जब खराब हो जाएं तो फिर किसको दिखाने की जरूरत है? कोई ऐसी अथॉरिटी तो है नहीं कि जिसके सामने आप अमाल करके उनसे जो है वो प्रिविलेजेस अर्न करेंगे, उनसे जो है वो आपको फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आप अमाल क्यों करते हैं जब ईमान नहीं? उसको लगता है कि वो ईमान पर है और अमल कर रहा है तो इसकी दलील है कि वो ईमान पर है, किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मिसाल के तौर पर आप अच्छे से स्कूल में पढ़ते हैं तो किसी किसी यानी बेहतर नतीजे के शौक में पढ़ते हैं आप, अच्छे से जो तालीम हासिल करते हैं, तो आपके आपके दिल में कोई शौक होता है कि आपको कोई अच्छे नतीजे मिलेंगे, आपको कुछ जो है वो अच्छे फवायद मिलेंगे, तब आप उसके लिए मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आमाल भी करते हैं कि भाई आपको अजर मिलेगा, आपको जजा मिलेगी, नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, तो इस वजह से ईमान करते हैं ना। लेकिन जब ईमान ही खत्म हो गया, ईमान की तो बुनियाद में एक आखिरत पर ईमान है, जब आखिरत पर ईमान आपका खत्म हो गया तो फिर अब आप क्यों कर रहे हैं? जजा और सजा तो का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, अब आप क्यों अमाल कर रहे हैं? ठीक है, अपने आप को दीनदार समझ कर, ये भी कोई जवाब शाफी जवाब नहीं हुआ ये। अमाल को ही ईमान समझ रहे थे इसलिए ईमान की फिक्र भी खत्म हो गई, वो तो अलग बात कर दी ना आपने। नहीं तो भाई अमाल जो है ना वो, उसको कहते हैं रिवायात, रिवायात। ठीक है, जिसको रसूम और रिवाज भी कहते हैं, रसूम और रिवाज भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब जो आप रसूम और रिवाज करते हैं ना, जैसे मेहंदी, मायूं, उबटन करते हैं कि नहीं करते हैं? मेहंदी, मायूं, उबटन, तो उसमें आपको कौन सा आखरत का अजर मिल रहा होता है? आखरत के अजर के लिए तो नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर क्यों करते हैं मेहंदी, रसूम और रिवाज क्यों करते हैं? इसलिए कि एवरीवन एल्स इज डूइंग इट, या लोग कर रहे हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है ना, उसमें आपको जो है वो अच्छा फील होता है, मेहंदी की उपटन की रस्म करके आपको अच्छा फील होता है क्योंकि रिवाज है ये मुआशरे का। ठीक है, तो रस्म और रिवाज जिस तरह से मेहंदी, मायों और उपटन की शक्ल में हो रहे होते हैं, उसी तरह से रस्म और रिवाज जो है वो दीनी भी शक्ल जो पुराने पहले से चल रहे थे। हाँ भी, बाप दादा को देखा था इस तरह से अमाल करते हुए, है ना भी? और हमारे जो है ना वो हिंदुओं में और हम में ये फर्क है कि हिंदू जो है वो ये वाले अमाल नहीं करते तो हम ये वाले अमाल करते हैं, वो अपने तौर के अमाल करते हैं, उनसे भी हम खुश हैं, उनसे भी हम राजी हैं, ये नहीं कि हमें उनको कोई तकलीफ है कि वो क्यों ऐसे अमाल करते हैं, उनसे भी हम राजी हैं हम, लेकिन हमारी अपनी एक जुदा शनाख्त है, हम मुसलमान हैं, हम ये वाले अमाल करते हैं, वो वाले अमाल करते हैं। जिस तरह वो हमाल करते हैं उसी तरह हम भी हमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका ईमान से तो ताल्लुक ना हुआ ना, इसका आखरत से तो ताल्लुक ना हुआ ना, इसका अल्लाह के हुक्मों से तो ताल्लुक ना हुआ ना। ठीक है, तो मुसलमान इस तरीके से अमाल, जैसे ताजिए निकालना है ना भाई, ताजिए निकालना ये भी तो एक इस्लामी अमाल का नाम इख्तियार कर गया ना, वो जो मुहर्रम का जुलूस निकालना इस्लामी अमल है भाई। कितने ऐसे इस्लामी लेबल वाले रसूम और रिवाज हैं जिनका अल्लाह अल्लाह के अहकाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुसलमान अवाम करते हैं। अल्लाह के हुक्म से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुसलमान अवाम करते हैं। शिर्किया अमाल होते हैं लेकिन दीनी शक्ल इख्तियार किए हुए होते हैं, लोग दीन समझ के कर रहे होते हैं। बिदत के अमाल होते हैं जिसको दीन का लेबल दिया हुआ होता है लेकिन लोग कर रहे होते हैं उसको। ठीक है, तो ये थे अमाल। ठीक है, और फिर इसके अंदर कुछ नमाजें वमाजें भी चल रही होती है ना, मिला तो फलाना तो ढिमकाना, एक से एक जो है वो रबीउल अव्वल के अमाल होते हैं, कुछ कुछ जो है वो 40वें के अमाल होते हैं, कोई जिनका ताल्लुक जो है वो आप उठा के पढ़ लेना, आप पढ़ ही चुकी हैं सब। बहश्ती जेवर, तहसील बहश्ती जेवर के अंदर भी ये पूरा का पूरा चैप्टर मौजूद है। ठीक है, कैसी कैसी बिदतें हैं उसके अंदर। ठीक है, वो सब आमाल समझ करके किए जा रहे होते हैं ना। ठीक है, तो इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आप करें जितना आपको करना है। ठीक है, हत्ता के इवन जो सही आमाल थे उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं, लेकिन तालीमी निजाम के जरिए से दिलों के अंदर इस दीन की जो एक असली हकीकत होती है कि भाई इस पे अमल करके अल्लाह की मदद आती है दुनिया के अंदर भी और कब्र के अंदर भी, सिर्फ कब्र में अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करने से बल्कि इस दुनिया में भी में भी अल्लाह की मदद आती है। ये कॉन्सेप्ट खत्म, जहनों से महव। ठीक है, बल्कि कामयाबी वो अंग्रेज के तरीके में, अंग्रेज के की बात मानने में, ठीक है, और अंग्रेज की इज्जत करने में, हत्ता कि इतना ज्यादा अंग्रेज की इज्जत, इतनी ज्यादा अंग्रेज की इज्जत मुसलमानों में बैठ गई कि आपने अक्सर इवन ऐसे वाकयात भी सुने होंगे, अनफॉर्चुनेटली कुछ बुजुर्गों से भी ऐसे वाकयात सुनने पड़ जाते हैं। ठीक है, वो शायद उनके जहन में बात नहीं आई होती, या अल्लाह आलम वो क्यों ऐसे वाकयात बयान करते हैं। आपने सुना कभी कि मुसलमानों के दो गुरोहों के दरमियान झगड़ा हो गया और मुकदमा जो है वो अंग्रेज की अदालत में गया और अंग्रेज जज जो था ना उसने जो फैसला दिया, ओ हो क्या जबरदस्त फैसला दिया अंग्रेज जज ने, कि मुसलमान हार गए इस्लाम जीत गया, ये फैसला कौन दे रहा है, अंग्रेज जज दे रहा है। ठीक है, तो अंग्रेज जज की क्या इज्जत है क्या, माशाल्लाह अंग्रेज जज का उसूल पसंद इंसान होता है अंग्रेज जज, वाकयात सुने इस तरह के ना कभी। तो इससे अंग्रेज जज की उसूल पसंदी क्या मुसलमान अवाम के जहनों के ऊपर छा जाती है ना भाई। आज यही देख ले, अंग्रेज है वो उसूल पाबंद, उसूल का पाबंद होता है और वो हमारे दिमागों के अंदर ये चीजें समाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जहनी गुलाम, बहुत ज्यादा डीप डाउन जहनी गुलाम, ठीक है, और अल्लाह का गुलाम नहीं, अल्लाह के निजाम की के ऊपर शक में मुब्तला। ठीक है, कि नहीं ये इस काबिल नहीं है कि आप यकीन करें, किसी दूसरे के तो दिल का हाल मैं आपको नहीं बता सकता ना, अपने दिल का हाल तो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, हम भी नमाजें पढ़ते थे, हम भी जो है वो दीन के बहुत सारे अमाल कर लेते थे बचपन में भी लड़कपन में भी। ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा संजीदा हो ना दीन के बारे में, तो पता है क्या सवाल आया था जहन के अंदर, पता है क्या सवाल आया था जहन के, मैं बता चुका हूं क्लास के अंदर बल्कि इस बात। ठीक है, और ये सिर्फ मैं आपकी समझ के लिए और यकीन के लिए बता रहा हूं, ये नहीं कि अपने गुनाहों को होगा खोल करके बयान करना, भाई अल्लाह ताला से अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करी फिर, और अल्लाह ताला की कबूलियत तौबा के ऊपर एतमाद भी है कि अल्लाह ताला तौबा को कबूल भी करते। ठीक है ना, तो हम आपको जो अपना गुनाह बता रहे हैं या अपने दिल की कैफियत बता रहे हैं, ये हम सिर्फ तालीम के लिए बता रहे हैं, ताकि इबरत पकड़े, ताकि इबरत पकड़े कि भाई कितनी हकीकत है। मैं अपने बारे में बता रहा हूं ना, तो वो तो हकीकत ही हो सकती है ना कि अपने दिल का हाल। ठीक है, तो जब थोड़ा सा दीन की तरफ संजीदा होए ना, तो उस वक्त जहन में पता है क्या सवाल आया था? उस जहन में ये सवाल आया था कि हमने जो दीन के किताबें पढ़ी, तो उससे हमें ये बड़े दावे नजर आते हैं कि यही दीन कामयाबी की अलामत है, यही दीन कामयाबी की जमानत है ना, किताबों में हमने ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो क्या ये कभी वाकई दुनिया में कामयाबी का सबब बना भी है? दुनिया में कभी कामयाबी का सबब ये दीन बना भी है, या ये सिर्फ जुबानी कलामी दावे हैं जो किताबों में लिखे हैं? मैं कसम खा करके आपको बता रहा हूं कि मेरे दिल में ये सवाल आया था। क्या, क्यों आया था ये सवाल? अब सोच नहीं कि ये सवाल क्यों आया हो, क्योंकि आई डिड नॉट नो एनीथिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि आई वॉज डूइंग द आमाल। जुम्मा मिस नहीं करते थे हम, हत्ता के नमाजें भी पूरी पढ़ते थे, फजर अगर कदा हो जाती थी फजर की कदा भी पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद दिल के अंदर क्या सोच थी कि ये दीन जो है ना, ये जो दावे हैं इस दीन के, क्या ये दावे कभी हकीकत की ये शक्ल भी इन्होंने देखी है कि नहीं देखी है? ये था दिल के अंदर इश्कार इस दीन के बारे में। ठीक है, हालांकि हम कोई बहुत ही हाई क्लास किस्म के एचएसएन स्कूल से नहीं पढ़े हुए थे, कराची ग्रामर स्कूल से नहीं पढ़े हुए थे, हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े थे, जिसमें ये भी नहीं पता था कि इंग्लिश मीडियम का मतलब क्या होता है। हम समझते थे कि वो जहां पे मीडियम लेवल की अंग्रेजी पढ़ाई जाती है ना, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं। ठीक है ना, मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और समझते थे कि मीडियम लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इस वजह से उसको इंग्लिश मीडियम कहते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अकल समझ कर इस्तेमाल करें कि जो वाकई बिल्कुल पक्का गोरा स्कूल में जो पढ़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ हैं, उनका उनके आप बच्चे का यूनिफॉर्म देखें, देख के ऐसा लगता है टाई पहना हुआ होगा, ऐसी बेहतरीन। हम भी वैसे टाई वाई, हमें भी टाई पहनाते थे वो स्कूल के अंदर, टाई हर थोड़े दिन के बाद वाजिब हो जाती थी, फिर उसके बाद लोग टाई पहनना छोड़ देते थे, फिर उसके बाद वो ऊपर से ऑर्डर आता था कि नहीं टाई पहनना है, टाई का क्या ताल्लुक है मुसलमान के साथ, लेकिन नहीं वाजिब टाई पहनना। लेकिन चूंकि वो मीडियम लेवल का स्कूल था ना, तो इस वजह से वो रिलैक्स भी हो जाते थे, फिर थोड़े दिन के बाद फिर किसी का दिमाग खराब होता था, फिर वो टाई की पाबंदी आ जाती थी फिर से। तो ऐसे जो स्कूल होते हैं उनके बच्चों को आप देखें, तो आपको अच्छा खासा कोई लंदन के स्कूल का स्टूडेंट नजर आएगा, वो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर हजारों लाखों की तादाद में स्कूल के बच्चे, आपको ऐसा लगेगा देख करके कि किसी यूरोप के स्कूल का बच्चा जा रहा है। ये क्यों भाई? अच्छे मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, मुसलमान नाम से मोहब्बत करने वाले, कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, झूठ बंद करो तुम बस यार। ठीक है, तो ये दिल की सोच थी। तो भाई आपका क्या ख्याल है, ये बाकी जो आपके मुसलमान बच्चे होते हैं जो कि आमाल करते हुए आपको नजर आते हैं, उनकी सोच ये नहीं होती? क्यों नहीं होती भाई? अल्लाह की वली होते हैं, उनके ऊपर वही नाजिल हो रही होती है कोई, कि जिसकी वजह से उनके दिलों में ये इश्कालात और ये एतराजात और ये शकूक और शुभात पैदा नहीं होते। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं ना, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, वो खामखा में नहीं फरमा रहे, बल्कि मुसलमान अपने आमाल के साथ भी अगर ईमान की मेहनत ना करे, और ईमान की मेहनत का मतलब आज के जो समझा हुआ ईमान की मेहनत, वो वाली मेहनत नहीं, आमाल करो आमाल करो आमाल करो, बल्कि ईमान होता क्या है, ईमान की तारीफ क्या है, नफ्से ईमान क्या चीज होती है, एतमाद, और एतमाद अल्लाह के हुक्मों के ऊपर, अल्लाह के कलिमात के ऊपर, शरीयत के ऊपर एतमाद, कि यही है कामयाबी। कुरान मजीद में जो कुछ अल्लाह ताला ने फरमाया है राइट, ये हम कहते हैं ना कराची की स्लैंग में कहते हैं लारे लप्पे देना, ये लारे लप्पे नहीं है, ये राग अलापना नहीं है अल्लाह के कुरान के अंदर, बल्कि ये हकीकत है। इसका ताल्लुक इंसान की और हमारी और पूरे मुआशरे की हकीकी जिंदगी के साथ है। यही है जिंदगी, इसके बगैर मौत है। इसको एतमाद कहते हैं अल्लाह के कलमात के ऊपर। ये किधर है, किसके पास है ये? इल्ला माशाल्लाह, चंद कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, कोई का एक आध उंगलियों पे गिने जाने वाले जैसे लोग हैं ये। अमाल करवा लो जितने करने हैं, अमाल करने वाले तो पहले भी थे, अमाल करने वाले आज भी कुछ पैदा हो गए, कुछ कुछ ज्यादा बढ़ गए। अमाल करने वालों की तादाद थोड़ी सी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में, ठीक है। तो फला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन, ये मुमतरीन, ये शक जो है ना, ये इंसान के ईमान को खत्म कर देता है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकन व अदला, तो कलिमात रब ये है सच्चे और ये है बिल्कुल मोतदल, बिल्कुल मोतदल। इनमें ना एक तरफ की एक्सट्रीम है ना इनके अंदर दूसरी तरफ की एक्सट्रीम है। ये ऐसे नहीं है कि जी ये काबिले अमल नहीं है, ये इनको करेंगे तो हमें हमें नुकसान हो जाएगा या इनके ऊपर अमल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये 1400 साल पहले के जमाने की बात थी। चलो 1400 साल नहीं, तो ये चलो 250 साल पहले के जमाने के अंदर तो ये काबिल अमल थे। आज के जमाने में जो है ना वो काबिल अमल नहीं है। हम उन नमाजों की बात नहीं करें जो आज आप अमेरिका में भी जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं, यूरोप में भी जाकर के आप नमाजें आमाल से आसानी से पढ़ सकते हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल करके सारे गुनाहों से अपने आप को बचाना ये मुमकिन नहीं है जी जमाने के अंदर। सारे गुनाहों से बचाना तो मुमकिन है ही नहीं जमाने के अंदर अपने आप। तो क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये तम्मत कलिमातु रब्बिका सिदकन व अदला, ये झूठ है ये वाली आयत, क्योंकि अल्लाह के हुक्म जिनकी नाफरमानी गुनाह कहलाती है, आप ये समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, गुनाहों से नहीं बचा जा सकता, तो आप इस आयत का इनकार कर रहे हैं। तो अब आपके समझने से कि मैं ईमान वाला हूं, मेरा ईमान सलामत है, इससे कुछ नहीं होता, ईमान सलामत नहीं है अब। और ये कह रहे हैं कि जी जो गुनाह करता है वो तो कुछ नहीं होता, गुनाह करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, झूठ बोले या जो है वो धोखा दे या जो है वो बेहयाई का काम करे या जो है वो काफिर के निजाम के साथ मोहब्बत करे। वो कहते हैं जी क्या होता है इस तालीमी निजाम से, ईमान को क्या होता है? अल्लाह ताला ने ईमान का मेयार सहाबा को बनाया, ईमान का मेयार सहाबा को बनाया, ठीक है। अमाल तो हम सहाबा के दर्जे के कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो माहौल नहीं है, हमारे पास वो नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत नहीं है, हम अमाल नहीं कर पाते, उसमें हमारी कमजोरियां कोताहियां, हम उस तरह की अमाल नहीं कर सकते। मारे मतलब गिरते पड़ते फराइज अगर हम पूरे करें वो भी कैफियत के बगैर, लेकिन फराइज पूरे करना तो वो तो कोशिश करके करना है, उसमें भी कमी कमी कोताही हो सकती है, लेकिन फराइज को फर्ज ना समझना ये तो ईमान की नफी कर देता है ना। जैसे कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन्हीं ने जिन्होंने मारुफुल कुरान लिखी, अपने उस किताब ईमान और कुफर कुरान की रोशनी, पतली सी किताब ना, पूरी पढ़ाई भी है सारी उसने क्लास के अंदर, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि कोई शख्स सारी जिंदगी नमाज ना पढ़े लेकिन वो नमाज को फर्ज समझता हो, 5 नमाजों को जैसे कि वो पढ़ने का तरीका नबी अलैहिस्सलाम से हमें पहुंचा है उस तरीके के मुताबिक उन शराइत के साथ 5 नमाजों को पढ़ना फर्ज समझता है लेकिन सारी जिंदगी उसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, वो मोमिन है, वो ईमान वाला है। लेकिन वो शख्स जो रोजाना 5 नमाजें मस्जिद में जाकर के पढ़ता है लेकिन इनको फर्ज नहीं समझता, वो काफिर है। फर्ज नहीं समझता वो काफिर है। तो अमल का मसला नहीं होता, सोच का मसला होता है, सोच से बंदा काफिर होता है, ठीक है। अमल से वो कमी कोताही की वजह से उसके ईमान की कमजोरी जरूर हो जाती है, लेकिन वो खत्म नहीं हो जाता उसका ईमान। ठीक है, तो भाई यहां पर तो हम हमारी सोच जो है वो, तो सहाबा कराम के ईमान को जो हमारे लिए स्टैंडर्ड बनाया, उसका मतलब क्या है कि हमारी सोच सहाबा वाली हो, ये लाजिम है। और सहाबा वाली सोच क्या है, कोई पूछे, कोई कहे कि भाई हमें क्या पता सहाबा की सोच क्या थी, कोई ऐसी दलील बताओ कि जिससे हमें पता चले कि सहाबा की सोच क्या थी। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि सहाबा की सोच क्या थी, अल्लाह ताला ने खुद, कि भाई किसी के जहन में 1400 साल के बाद ये सवाल आए ना कि भाई मुझे क्या पता सहाबा की सोच क्या थी, तो मैं खुद बता देता हूं कि सहाबा की सोच क्या थी। अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में फरमाया, वह हब्बा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया और तुम्हारे कुलूब के अंदर इसको मुजय्यन कर दिया। पक्की बात हो गई कि जब अल्लाह ने सहाबा के दिलों में ईमान को महबूब बना दिया, तो क्या सहाबा उसका इनकार कर सकते थे कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं हम यानी हमारे दिल जो है ना वो ईमान के बारे में मोहब्बत में मुब्तला नहीं होना चाहते। ए अल्लाह, आप तो बना रहे हैं और आप ऐलान भी कर रहे हैं कि आपने हमारे दिल में ईमान को महबूब बना दिया, लेकिन वी डोंट वांट दैट। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना कि जिसके बारे में अल्लाह कह रहे हो कि हमने उनके दिलों में ईमान को महबूब बना दिया, उसके दिल में ईमान वाकई महबूब ना बन सका। ये जुमला याद रखें, क्या ये मुमकिन है कि जब अल्लाह कह रहा है कि मैंने इन लोगों के दिलों में ईमान को महबूब बना दिया, तो क्या ये मुमकिन है कि उनके दिलों में ईमान महबूब ना बना? क्या ये मुमकिन है? तो अल्लाह को आपने क्या, अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं नहीं फिर भी नहीं बना उनके दिलों में ईमान महबूब, तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह को अल्लाह मानते ही नहीं है, अल्लाह को कादिर मानते ही नहीं है, कि इतना तो वो कर नहीं सका, नाउज बिल्ला, बात समझाने की खातिर, कि बेचारा अल्लाह इतना तो कर नहीं सका कि कुछ लोगों के दिलों में ईमान को महबूब बना देता, हालांकि वो खुद कह रहे कि मैंने महबूब बना दिया, लेकिन असल में वो बना नहीं सका, असल में वो बना नहीं सका। ठीक है, तो जो सहाबा को मुर्तद कहते हैं, इस आयत से साबित हो गया कि वो काफिर हैं, कि वो अल्लाह के इस ऐलान को, कुरान मजीद में अल्लाह के ऐलान को वो कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह नहीं बना सका उनके दिलों में ईमान को महबूब, है ना भाई, जो सहाबा के दुश्मन है शिया रवाफिज। तो इस आयत से ही साबित होता है कि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो इस आयत का इनकार कर रहे हैं। सहाबा को जो है वो मुर्तद कह करके, सहाबा को नऊज बिल्ला काफिर कह करके, वो कुरान मजीद का इनकार कर रहे हैं। ये तो एक अलग बात हो गई, हम अपनी बात कर रहे हैं वैसे तो अभी। ठीक है, तो हब्बा इलैकुमुल ईमान, यानी सहाबा का ईमान हमारे लिए स्टैंडर्ड है, और सहाबा के ईमान की तारीफ अल्लाह ताला ने खुद कर दी कि उनके दिलों में ईमान महबूब था। लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी बात क्या फरमाई, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसयान। ठीक, कर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसयान, कि तुम्हारे दिलों के अंदर हमने कुफर को, यानी नबी अलैहिस्सलाम पर बद एतमादी को हमने मकरूह बना दिया, और फिस्क को और इसयान को, यानी छोटे दर्जे के जो गुनाह थे ना उनको भी मकरूह बना दिया, और सबसे बड़े दर्जे का गुनाह जिसको कुफर कहते हैं उसको भी मकरूह बना दिया। तो अब जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि सहाबा के दिलों की कैफियत ये हमने बना दी कि वो कुफर फिस्क और इसयान से नफरत करते थे, तो वो बन गई ना उनके दिल की कैफियत ये, तो सहाबा के ईमान की तारीफ अल्लाह ने खुद बयान कर दी कि ईमान से मोहब्बत करने वाले, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद से मोहब्बत करने वाले थे। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम सलाम के ऊपर एतमाद का मतलब क्या भाई, कुरान और नबी अलैहिस्सलाम सलाम की सुन्नत है, उन पर एतमाद करने से इनको मोहब्बत थी। ठीक है ना, उन पर एतमाद करने से उनको मोहब्बत थी, और उनके खिलाफ जाने वाला जो भी मामला था उससे इनको नफरत थी। ये था सहाबा का ईमान, जो अल्लाह ताला ने खुद डिफाइन कर दिया कि भाई ये था। क्योंकि मैंने ऐसा बना दिया था उनका ईमान। अब हम अपना ईमान देखें, क्या हमें नबी अलैहिस्सलाम के दीन, जो कि कुरान, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें और इजमा, ठीक, ये सब मिलकर के दीन बनता है ना, इजमाए उलमाए उम्मत, ठीक है, ये सब मिलकर के दीन बनता है, क्या हमें उसके ऊपर एतमाद है? क्या हमें उस एतमाद से मोहब्बत है? क्या हमें उस एतमाद से मोहब्बत है हब्बबा, या हमें जो है वो किसी और पर एतमाद से मोहब्बत है जिसके लिए हमारे दिल में नफरत होनी चाहिए थी, जिसके लिए हमारे दिल में नफरत होनी चाहिए थी, तब हम बनेंगे ना सहाबा के जैसे ईमान वाले। तब हमारा, यानी सहाबा के जैसे ईमान वाले का मुसीबत यह है कि हमारे जहन में फिर वही अमाल आ जाते हैं। नहीं, सोच सोच वाले, जब तक हम कराहियत नहीं करेंगे कुफर से और फिस्क से और इस्यान से, जब तक हम कराहियत नहीं करेंगे दिल के अंदर, तो उस वक्त तक हम सहाबा के स्टैंडर्ड वाला ईमान तो हमारे दिल में नहीं हो सकता ना, तो फिर हमारा ईमान कैसे हो? क्योंकि उनके ये दो कैफियत, मोहब्बत और नफरत वाली कैफियत, ये ईमान का स्टैंडर्ड है हमारे लिए। ये भी कुरान मजीद की एक दूसरी आयत से, ये उस वक्त तक इनका ईमान नहीं होगा जब तक तुम्हारे जैसा ईमान नहीं हो उनका। अब काफिरों की दुम में लग करके जो उनकी मुशाबहत तशब्बो हम इख्तियार करते हैं, उनका जैसा लिबास पहनते हैं, हमें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, हमें कोई गैरत नहीं आती, हम खुद भी पहनते हैं, अपनी औलाद को भी पहनाते हैं, उनके जैसे आमाल करते हैं, उनकी जैसी बातें करते हैं, उनकी जैसी सोच इख्तियार करते हैं, और उसको हम जो है वो प्रूफ करते हैं कि जी यही सही है, पूछते भी नहीं है कि भाई क्या ये तशब्बो बिल कुफार है या ये तशब्बो बिल मोमिनीन है, पूछते तक नहीं है। अभी जाहिल हो तो कम से कम पूछ तो लो ना, नहीं पूछते भी नहीं है, खुद से एज्यूम करके बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ईमान, कैसा ईमान, कहां से ईमान आया हमारे दिलों के अंदर? ले दे करके फिर वही अमाल बच जाते हैं, और अमाल के ऊपर समझ रहे हैं कि जी भाई अमाल अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। अच्छे अमाल करने से ईमान का कमाल मिलता है, ईमान का आला दर्जा मिलता है, लेकिन आला दर्जा तो उस वक्त मिलेगा ना जब जो उसका बेयर मिनिमम, जो उसका बेस लेवल है, फाउंडेशन लेवल है, वो मौजूद होगा, तब उसके ऊपर आपको कमाल मिलेगा। अच्छे अखलाक के जरिए से, मोहब्बत के, यानी जितने मोहब्बत के जज्बात बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपका ईमान का कमाल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं कि आप कलिमातुल्लाह के बारे में और शरीयत के बारे में शक हो आपके दिल के अंदर, और जहां मौका मिलता है जुबान से भी जो है वो उसका आप इनकार करते हैं, इस कैफियत के साथ जब आप अच्छे अखलाक किसी के साथ रवा रखेंगे तो आपको ईमान का कमाल मिल जाएगा। भाई बेस ही नहीं है आपके पास, फाउंडेशन ही नहीं है आपके पास, आप कमाल के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ये तो धोखा है ना कमाल का। ये हकीकत में तो कमाल नहीं मिल सकता, क्योंकि कमाल तो किसी चीज की बुनियाद के होने के बाद मिलता है ना, जब बुनियाद ही नहीं है तो कमाल कैसा, बुनियाद ही नहीं है तो कमाल कैसा। जैसे आप बड़ी अच्छी जो है वो इमारत बनाना चाहें, तो भाई पहले इमारत की बुनियाद होगी, फर्स्ट फ्लोर तक आपने कुछ बेसिक इमारत बनाई हुई होगी, अब उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फ्लोर्स आप बनाएंगे जो बड़े खूबसूरत से फ्लोर होंगे, बड़े जबरदस्त किस्म के फ्लोर होंगे, लेकिन अगर ना तो आपने बेस डाली, ना जो है वो आपने उसकी कोई ग्राउंड फ्लोर बनाया, तो ऊपर से आप ब्यूटीफुल फ्लोर्स जो ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो ब्यूटीफुल फ्लोर्स तो फिर हवा में ऐड करने पड़ेंगे ना आपको। यही हमारे अमाल का मामला है, हवा में ऐड कर रहे होते हैं हम ब्यूटीफुल फ्लोर्स अमाल कर करके, ठीक है, हालांकि हम कलिमातुल्लाह के बारे में शक में मुब्तला है, हत्ता के इनकार तक करने से जो है वो हम झिझकते नहीं। और जहालत का ये हाल कि अलिफ का बे भी नहीं पता होता, और जो है ना वो हम जो इल्म की गहराई और समझ रखने वाले लोग हैं वो हमें बात बताते हैं दीन के बारे में, हम कहते हैं नहीं आई डिसएग्री विद इट, आई डोंट एग्री विद दैट। ऑन व्हाट बेसिस डू यू नॉट एग्री विद दैट? क्या बेसिस है आपके इस डिसएग्रीमेंट की? कुछ इल्म है आपके पास जिसकी बुनियाद पर आप जो है वो इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं? बताने वाला आपको कुरान की रोशनी में एक बात बता रहा है, हदीस मुबारक की रोशनी में एक बात बता रहा है, और आप अपनी जहालत के साथ कह रहे हैं कि नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता। तो भाई आप पूछ तो लेना कि मैं मेरी डिसएग्रीमेंट जो है वो क्या सही है, क्या आप मुझे समझा दें। मेरे जहन में ये बात रजिस्टर नहीं हो रही, इस तरह से बात करना चाहिए ना, मेरे जहन में ये बात रजिस्टर नहीं हो रही, आप मुझे समझा दें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अपने जोम में अपने आप को फिर एकदम से जो है वो अल्लामा समझना शुरू कर देते हैं, हालात हाजरा की खबरें सुन सुन करके जो है ना अपने आप को अल्लामा समझना शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि जी बहुत बड़े जो है ना वो दीन के प्लानर बन चुके हैं ये, और जो दीन की बुनियाद उसका इनकार। ठीक है, तो तम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकन व अदला, ये भी तो कुरान मजीद की आयत है ना, और हमारा जो इनकार है इन बातों का, हम उसके बाद अपने आप को ईमान समझ रहे हैं। और भाई नहीं, ये जो डूबना है ना, डूबना उसमें से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है कि कश्ती में जो बैठे हुए हैं ना, जो असली सही वाली कश्ती है, ठीक है, वहां से जो जिन्होंने रस्सी फेंकी है और वो आपको ऊपर से आवाजें दे रहे हैं कि रस्सी को थाम लीजिए, रस्सी को थाम लीजिए, हम आपको ऊपर खींच करके कश्ती में ले आएंगे, फिर आप कश्ती में आने के बाद जो है ना वो अच्छी गिजा भी खाइएगा, और कश्ती में आने के बाद आप जिम भी चले जाइएगा, मसल्स भी आप बना लीजिएगा अपने, लेकिन पहले आपको मान करके कश्ती रस्सी को पकड़ना पड़ेगा, हम आपको ऊपर कश्ती में खींच लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यही काम लगाया गया है भाई। लोगों को जो मान लेते हैं बात उनको कश्ती में खींच लो, अब कश्ती में आने के बाद आप हेल्दी फूड्स खाएंगे ना, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे आपकी बात मानने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं कश्ती में आने की, मैं समंदर में डूबते डूबते ही जिम ज्वाइन कर लूंगा, ओशन जिम, वहीं पे मैं अपनी मसल बिल्डिंग कर लूंगा, वहीं पे मैं अपनी हेल्दी फूड्स खाना शुरू कर दूंगा, वहीं पे मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक्स पीना शुरू कर दूंगा, ठीक है, समंदर के अंदर ही, हालांकि समंदर के अंदर जिंदा रहने के बाद थोड़ी सी देर है, जिंदा है वो भी इसलिए जिंदा है ताकि आप पकड़ सकें रस्सी को, वरना तो समंदर में मौत ही मौत है। ठीक है, तो वो रस्सी को पकड़ लेना ये ईमान लाना है, जिसने रस्सी को पकड़ लिया वो ईमान ले आया, अब जब वो कश्ती में पहुंच गया ईमान ला करके, अब वो अमाल करेगा। तो सबसे पहली चीज तो ईमान लाना था, लेकिन उसमें आप जो है वो शक में पड़े हुए, बदएतमाद में पड़े हुए, एतराज में पड़े हुए, इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक रस्सी को ही नहीं पकड़ा। ठीक है, तो ये सब जो है ना ये फिर इस ये कैसे होता है, ये उस निजाम के जरिए से होता है कि जिसके अंदर आपकी जहन साजी, आपकी नस्लों की जहन साजी ऐसी हो रही होती है। ठीक है, कि अजमत साइंसदान की, अजमत उसकी हाइपोथेसिस की, या उसके तजुर्बात के जरिए से चंद चीजें जो उसने देखी हैं इसकी अजमत। ठीक है, जबकि अल्लाह की तकदीर, अल्लाह का निजाम, अल्लाह के रसूल की अजमत, अल्लाह के रसूल के सहाबा की अजमत, उनका तो कोई साइंस से ताल्लुक नहीं था ना, उनका तो कोई जो है वो इन हाइपोथेसिस के साथ ताल्लुक नहीं था, उनका तो ताल्लुक था अल्लाह के अहकाम के साथ, उनको अजमत तो अल्लाह के अहकाम के जरिए से मिली थी, जबकि साइंसदान को अजमत किस किसके जरिए से मिली, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से, ऑब्जर्वेशन के जरिए से, हाइपोथीसिस के जरिए से। तो आपके जो औलादें होती हैं उनके जहन में किसकी अजमत होती है? हत्ता कि हमारे एक साथी ने अभी, जिन्होंने क्लास सुनी होगी उन्होंने सुना, मुझे तो मेरे बच्चे ने बताया कि डॉक्टर साहब जो PhD डॉक्टर साहब हमारे कसस-ओ-लंबिया पढ़ा रहे होते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे उस्ताद थे पाकिस्तानी मुसलमान, तो वो कहने लगे कि या अगर आइंस्टाइन, या पता नहीं किसका नाम लिया था, आइंस्टाइन या न्यूटन किसी का, कि अगर जैसे आइंस्टाइन जो है ना वो नबूवत का दावा कर देता तो मैं उसके ऊपर ईमान लेकर के आ जाता। अगर आइंस्टाइन नबूवत का दावा करता तो मैं उसके ऊपर ईमान ले आता। तो अब सोचें इस तरह का जुमला कहना। और सबसे अहम बात यह है कि आइंस्टाइन की कितनी मोहब्बत उस बंदे के दिल में आई, और वो बहुत बड़ा कोई साइंसदान था पाकिस्तान का। उन्होंने खुद बताया कि मैं उसका नाम नहीं आपको बताना चाहता क्योंकि आज वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजिशन के ऊपर है, इस वजह से मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा। और इस तरह के कितने वाकयात, ऐसी पीएचडी डॉक्टर जो बाद में दीनदार बन गए उन्होंने ऐसे वाकयात सुनाए कि फलाना जो साइंस का स्टूडेंट था हमारे साथ वो ऐसी बातें करता था अल्लाह के बारे में, फलाना स्टूडेंट जो है वो ऐसी बातें करता था, फलाना स्टूडेंट जो है ऐसी बातें करता था। तो ये साइंस के खिलाफ, फिर वही बात, हम साइंस के खिलाफ नहीं है, साइंस के ऊपर तो मुसलमानों ने भी तरक्कियां करी थी, लेकिन इस तालीमी निजाम के अंदर जिस तरीके से साइंस पढ़ाई जाती है वो तो अल्लाह, उसके रसूल, उनके सहाबा और उनकी शरीयत हर चीज की नफी कर रही होती है। और हम कहते हैं कि नहीं जी, हम वी केम आउट प्रिटी गुड, वी केम आउट जस्ट फाइन फ्रॉम दिस एजुकेशन सिस्टम। तो उसके ऊपर फिर यही कहा जाएगा कि यू डोंट इवन नो व्हाट द वर्ड फाइन मीन्स। आपको सही सलामत बच के निकलने का मफहूम ही नहीं पता, इस वजह से आप अपने आप को सही सलामत बच के निकलने वाला समझ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम आज की क्लास खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेने के बाद आपसे माजरत, सलाम वालेकुम।